यह गुप्त काल। इस समय यह भारत का सर्व प्रधान धर्म बन गया। अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे तथा लगता है इसको अपने राज्य में राजधर्म का स्थान दे चुके थे। साहित्य में भी विष्णु और उनके संप्रदाय को अधिक उजागर किया गया है। मूर्तन में अधिकाधिक वैष्णव मूर्तियां ही बनने लगी थी। विष्णु के मंदिरों का निर्माण भी इस समय हुआ है। अधिकांश गुप्त सिक्कों पर भी किसी न किसी प्रकार इस संप्रदाय की छाप दिखती है। वैष्णव प्रभाव के बहुमुखी विधा के कारण इस काल को वैष्णव धर्म की चरमाता का काल कहा जाता है। इस समय मुख्य रूप से वैष्णव धर्म में विष्णु का अवतार रूप भी जुड़ गया। गीता के अनुसार धर्म के ह्रास और अधर्म की वृद्धि पर विष्णु अपने अंश से अवतार रूप में प्रकट होंगे। यद्यपि अवतारों का ज्ञान ब्राह्मणों और महाकाव्यों के समय से ही हो चुका था, इस अवस्था में अब वैष्णव धर्म के स्वरूप में वृद्धि हुई और पीछे चलकर लोक देवताओं को तथा विशिष्ट पुरुषों को भी अवतार की सीमा में समेटने के कारण इसकी संख्या क्रमशः बढ़ती गई। पहले केवल 4 ही अवतार माने गए थे, वाराह, नृसिंह, वामन और वासुदेव कृष्ण। फिर 2 और बढ़े, परशुराम और राम। पीछे ये 10 हुए। इन 4 अतिरिक्त नामों को पुराणों की सूची में अलग अलग बताया गया है। कहीं 24 और कहीं 39 अवतारों की संख्या भी सूची में दी गई है, पर इनमें 10 अवतारों की मान्यता प्रमुख है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, युद्ध और कल्कि। गुप्तकालीन फलकों से 5 अवतारों की मान्यता तो स्पष्ट ज्ञात होती है, पर शेष 5 अज्ञात है, क्योंकि कोई फलक पूरा नहीं मिला है। ये स्पष्ट 5 है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह और वामन। दूसरी विशेषता है कि इस समय लक्ष्मी भी इनके साथ आ गई। इनको अब विष्णु की पत्नी के रूप में मान लिया गया था, इसी से इनका नाम विष्णु प्रिया भी मिलता है, ऐसा स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है। मिरीह कुल के ग्वालियर अभिलेख में भी इसकी चर्चा है तथा कालिदास ने भी इनको इसी रूप में वर्णित किया है। विष्णु को भी अब अनेक नामों से विविध अभिलेखों एवं ग्रंथों में संबोधित किया गया है। चक्रपाणि, चक्रधर, गोविंद, गदाधर, जनार्दन, चित्रकूट स्वामी, दामोदर आदि। यह लोकात्मा के समन्वय का बोधक है। इनकी शक्ति महति स्वीकार की गई थी, तभी कालिदास ने कहा है वे विश्व सृष्टा, पालक, संहारक तीनों रूप धारण करते हैं। स्वयं अमाप्य होकर तीनों लोकों को नाप लिया है, सर्वत्र होते हुए भी अज्ञात है, सबके आदि स्रोत है, पर स्वयं स्वयंभू हैं। इस समय वैष्णव धर्म का प्रचार व्यापक रूप से हो रहा था। इसके प्रमुख आधार हैं: 1 गुप्त सिक्कों तथा अभिलोकों में सम्राट के लिए परम भागवत उपाधि, 2 गुप्त सिक्कों के पृष्ठ भाग पर प्रायः लक्ष्मी का अंकन, 3 गुप्त सिक्कों के अग्रभाग पर राज चिन्ह के रूप में गरुड़ ध्वज का होना, 4 वैष्णव मंदिर और मूर्तियों का बनना, 5 वैष्णव पुराणों का संकलन। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौह स्तंभ लेख में विष्णु ध्वज स्थापित करने का उल्लेख है। इसी समय की उदयगिरी गुहा से प्राप्त विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति तथा वाराह मूर्ति, मंदसौर से प्राप्त नरवर्मन के अभिलेख में वासुदेव की स्तुति, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख का प्रारंभ जीतम भगवता से होना, इसके पूना ताम्रपत्र पात्र में भगवत के चरणों में भूमिदान, प्रवरसेन के अभिलेख में चक्रपाणि का उल्लेख, वैग्राम अभिलेख में गोविंद स्वामी नामक देवकुल को दान देना, चंद्रगुप्त द्वितीय के वैष्णव होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। साथ ही उसके सिक्कों से भी यह पुष्ट होता है, क्योंकि एक सिक्का का प्रकार स्पष्ट रूप से विष्णु की आकृति वाला है, जिसे चक्र विक्रम प्रकार कहते हैं। अन्य सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लेख श्री विक्रम और लक्ष्मी का अंकन भी इसकी पुष्टि करता है। कुमार गुप्त प्रथम के गंगाधर और नगरी अभिलेख विष्णु मंदिर के निर्माण की चर्चा करते हैं तथा इसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की आकृति बनी है। इसकी रजत मुद्राओं के पृष्ठ पर परम भागवत का उल्लेख तथा ताम्र मुद्राओं के पृष्ठ पर गरुड़ का अंकन भी इसको प्रमाणित करता है। स्कंद गुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में एक मंदिर निर्माण और सारंगीण प्रतिमा की स्थापना का ज्ञान भीतरी उत्खनन से भी प्राप्त हुआ है। गढ़वा अभिलेख में अंतस्वामी और चित्रकूट स्वामी का उल्लेख, कानपुर के भीतर गांव का वैष्णव मंदिर और उसमें शेष शाही विष्णु का अंकन, जूनागढ़ अभिलेख में विष्णु की स्तुति तथा चक्रभृत के मंदिर की स्थापना और इसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की आकृतियां भी इसी पक्ष को उजागर करती हैं। गुप्तोत्तर अभिलेखों में एरण, मंदसौर, दामोदरपुर, खोह आदि वैष्णव धर्म के प्रचार के पोषक हैं। मंदसौर के बंधु वर्मा के सूर्य मंदिर अभिलेख के अंत में सारंगढ़ का उल्लेख, एरण की मातृ विष्णु द्वारा नारायण के मंदिर की स्थापना, जयनाथ द्वारा विष्णु के मंदिर में चरु तथा सत्र के लिए दान देना, बुद्ध गुप्त के काल में कोकमुख स्वामी तथा श्वेत वाराह नामक देवताओं के मंदिर निर्माण का दामोदर पुत्र ताम्रपत्र में उल्लेख आदि विष्णु के विविध नामों तथा उनके पूजन होने के प्रमाण हैं। छठी शती में देवगढ़ के दशावतार मंदिर, ईशान वर्मा के हरहा अभिलेख, पहाड़पुर के से प्राप्त मृड फलकों के अंकन से भी वैष्णव धर्म के प्रसार का ज्ञान प्राप्त होता है। परवर्ती गुप्त काल में शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां बहुतायत से विभिन्न कला केंद्रों में बनी हैं। साथ ही द्विभुजी तथा अष्टभुजी मूर्तियां भी मिली हैं। विविध स्थानों से शेषाशायी विष्णु की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। अवतारी मूर्तियां और इसके मूर्ति फलक भी प्राप्त हुए हैं। वाराह की मूर्तियां दो रूपों, भू वाराह तथा आदि वाराह के रूप में भी मिली हैं। कई मंदिरों के निर्माण की भी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, जो इस धर्म की व्यापकता को प्रमाणित करते हैं। यद्यपि डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने वैष्णव धर्म को गुप्त काल मात्र का एक प्रचलित धर्म माना है, क्योंकि उनको डॉक्टर दीक्षितार द्वारा प्रस्तुत भागवत शब्द के अर्थ से शंका है कि क्या यह शब्द शैव धर्म की भी बोधक हो सकता है, पर ऐसी बात अन्य प्रमाणों के संदर्भ के आधार पर स्वीकार नहीं की जा सकती। परवर्ती गुप्त काल में पूर्वी चालुक्य शासकों द्वारा गरुड़ चिन्ह का शिरस्त्राण धारण करना प्रारंभ किया गया। इनके अधिकांश अभिलेख वाराह की स्तुति से ही प्रारंभ होते हैं। दक्षिण के चालुक्य शासक मंगलेश ने एक पर्वत के शिखर पर गुहा के भीतर विष्णु, नारायण, वाराह और नृसिंह की आकृति का अंकन करवाया था। वहां शेषधारी विष्णु हैं। एलोरा में दशावतार विष्णु की आकृतियां अंकित की गई हैं। वहां भी गोवर्धनधारी कृष्ण, नृसिंह और वामन की आकृतियों का अंकन है। अमरकोश में भी वासुदेव के पिता का नाम वसुदेव दिया गया है। इसी प्रकार वाराह मिहिर की बृहत संहिता में भागवत शब्द का प्रयोग इस संप्रदाय के लिए किया गया है। एक पांचरात्र संप्रदाय। इस समय से अवतारों की उपासना प्रारंभ हुई, किंतु पुरातात्विक प्रमाणों के अभाव में लगता है कि व्यू का कोई स्थान इस धर्म में नहीं था। अब इसका केवल एक देवता वासुदेव ही रह गया था। इस समय कमन से जो भरतपुर में एक स्थान है, एक प्रस्तर खंड प्राप्त हुआ है, जिस पर मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह और वामन का अंकन किया गया है। इस प्रकार अवतार पूजा, जो पांचरात्र संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण अंग है, गुप्त काल में पूर्ण रूप से प्रारंभ है और विकसित हुआ है। पर पुरातात्विक दृष्टि से दो अवतारों की ही प्रधानता स्वीकार की जा सकती है, वाराह और नृसिंह। वाराह अवतार इस समय अत्यंत व्यापक था। उदयगिरी, भीतरगांव, दामोदरपुर तथा एरण, इन से इनकी गुप्तकालीन शैली में बनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां दो प्रकार की हैं, सूकर के सिर युक्त मनुष्य की धड़ वाली मूर्ति भूवाराह तथा वास्तविक वाराह या आदि वाराह की मूर्ति। दामोदरपुर अभिलेख में श्वेत वाराह तथा तोरमार के एरड अभिलेख में देव वाराह का उल्लेख है। एरड अभिलेख में धन्य विष्णु द्वारा इनके मंदिर के निर्माण का भी वर्णन है। इस काल के नृसिंह की मूर्तियां अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। वेशनगर से प्राप्त प्रस्तर मूर्ति तथा बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मुहर पर अंकित मूर्ति वाराह की उपासना इतनी विकसित थी कि पीछे इसका एक अलग उप संप्रदाय बन गया। अब इसकी पूजा में तांत्रिक प्रभाव भी समाहित हो गया। तभी इसके उपासक नृसिंह के मंत्र को मंत्रराज कहने लगे। इसके उपासकों में यह भाव स्थापित हुआ कि नृसिंह की आकृति को साथ रखने पर वह भय मुक्त रहता है। इसी समय पंचरात्र ग्रंथों की रचना भी हुई। इनमें निम्न चार पदों की शिक्षा का उल्लेख है। एक, ज्ञान बुद्धि। दो, योग ध्यान। तीन, क्रिया मूर्ति या मंदिर का निर्माण और उसकी सुरक्षा। चार, चर्या धार्मिक एवं सामाजिक बनाना, जिसे नित्य पूजा त्योहार वर्णाश्रम धर्म आदि। इनके संबंध में गोविंदाचार्य का विचार है कि प्रथम दो इसके सैद्धांतिक या आंतरिक पक्ष है तथा शेष दो इसके व्यवहारिक या बाह्य पक्ष है। पद्म तंत्र में पंचरात्र का अर्थ बताया गया है कि पांच शास्त्र। इनकी उपस्थिति में अन्य शास्त्र अंधकार के समान है। योग, सांख्य, बौद्ध, अरहत, कपाल, शुद्ध, शैव, पाशुपत, इस प्रकार इसमें दो पक्ष हैं, एक भक्ति का तथा दूसरा भोग का। दो, गोपाल कृष्ण संप्रदाय। इस समय यह संप्रदाय मथुरा से बाहर निकलकर बंगाल में भी पहुंच गया था। यही कारण है कि पहाड़पुर से कृष्ण लीला संबंधी अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, किंतु नाग दमन की कथा जो कालीदह और नाग के साथ जुड़ी है यहाँ नहीं मिलती। इसके पीछे कारण यह रहा होगा कि बंगाल में नाग पूजा का महत्व नहीं रहा होगा, जिससे यहाँ इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा होगा। यहाँ एक विशिष्ट बात और भी देखने को मिलती है कि अब इस संप्रदाय में तांत्रिक प्रभाव प्रवेश कर चुका था। इसी का परिणाम है कि बंगाल में गोपाल कृष्ण की लीलाएं अधिक प्रचलित थी। हरिवंश तथा विष्णु पुराणों में भी वर्णित इस धर्म में तांत्रिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजस्थान में भी इस संप्रदाय का प्रचार हो रहा था, पर यहाँ तांत्रिक प्रभाव का नितांत अभाव था। गुप्त काल के बाद वैष्णव धर्म का केंद्र उत्तर भारत नहीं रह सका। सातवीं शती के उत्तर भारत के शासकों ने शैव धर्म स्वीकार कर लिया था। इससे इस धर्म का प्रभाव यहाँ गिरने लगा। अब विंध्य पर्वत के दक्षिणांचल में इसका विस्तार होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ संतों का उदय हुआ और उन्होंने इसके प्रचार में बहुत अधिक योगदान किया। गुप्त काल के बाद गुप्त शासकों के बाद इस धर्म के विकास की गति उत्तर भारत में अत्यंत मंथर हो गई। लगता है कि अहिंसा और भक्ति प्रधानता इसकी दो विशेषताओं के कारण इस धर्म के पनपने का परिवेश इधर नहीं रहा। छोटे छोटे विश्रृंखलित राज्य तथा यवनों का आक्रमण जनता को हिंसा के लिए पुकारने लगा कि अहिंसा में से अपने अस्तित्व तथा देश की सुरक्षा का मार्ग अब संभव नहीं रह गया है। इससे शैव और शाक्त संप्रदायों को विशेष मान्यता मिली, पर वैष्णव धर्म भी एक सामान्य धर्म के रूप में यहाँ जीवित रहा। हर्ष के काल में भी यह धर्म मंथर गति से चल रहा था। बाण ने पांचरात्र तथा भागवत संप्रदायों के उपासकों का उल्लेख किया है, जो दिवाकर मित्र के आश्रम में रहते थे। वज्र राज कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपी कृष्ण के रूपों में कृष्ण भक्त अब कृष्ण की उपासना करने लगे थे। श्री कृष्ण विषयक कथाएं कादंबरी में भी प्राप्त होती हैं। इस समय के कुछ राजवंशों ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसमें प्राग ज्योतिषपुर आसाम के शासक भास्कर वर्मन का नामोल्लेख किया जा सकता है, जो हर्ष का समकालिक था। एलोरा के गुहा मंदिर में, जो लगभग इसी समय के बने हैं, इस धर्म के चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें 15वीं गुहा गुहा विशेष उल्लेखनीय है। इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों का अंकन है। उनमें सर्वप्रमुख है शेषशायी विष्णु की मूर्ति, जिसमें शेषनाग पर विष्णु लेटे हैं और लक्ष्मी उनका चरण दबा रही हैं, तथा उनकी नाभि से कमल नाल निकला है, जिस पर प्रफुल्लित कमल पर विष्णु भगवान विराजमान हैं। यहाँ गोवर्धनधारी कृष्ण की भी बड़ी ही रुचिकर मूर्ति मिली है। इसके अतिरिक्त वामन, वाराह और नृसिंह की भी मूर्तियां उकेरी गई हैं। राजपूत युग में आने पर भी इस धर्म का प्रचार देखने को मिलता है। यह बात अन्यथा है कि यहाँ अब यह राजधर्म के रूप में नहीं था, फिर भी इसके संबंध में अनेक मूर्तियां, मंदिर, अभिलेख तथा प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इसका सबसे सटीक प्रमाण खालिमपुर के दान ताम्रपत्र से प्राप्त होता है, जिसमें वैष्णव मंत्र से ही अभिलेख का प्रारंभ किया गया है। ओम प्रणव मंत्र नारायण का है। इसके साथ नारायण या वासुदेव को जोड़ना विष्णु धर्म की प्रधानता का बोधक है। इसी वंश के देवपाल द्वारा नारायण मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। सेन वंशीय शासक अपने को परम वैष्णव कहते हैं। गीत गोविंद के जयदेव ने राधा कृष्ण संप्रदाय का उल्लेख किया है। इससे विदित होता है कि यहाँ कृष्ण प्रिया राधा को भी इसमें स्थान मिल गया था। इसी समय की एक बड़ी ही सुंदर और चित्ताकर्षक मूर्ति पहाड़पुर में गोवर्धनधारी कृष्ण की प्राप्त हुई है। विष्णु सहस्त्र नाम का भी चलन इस समय समाज में था। प्रतिहार शासक भोज के अभिलेख में ऋषिकेश का उल्लेख विष्णु के लिए प्राप्त होता है, जो पूर्ण सगुण है और आंशिक रूप से निर्गुण भी है। अनेक वैष्णव मंदिरों के निर्माण का भी ज्ञान इस काल के संबंध में प्राप्त होता है, तथा उनके लिए दिए गए दान का भी परिचय प्राप्त होता है। चंदेल वंश के शासक परमर्दी देव द्वारा विष्णु मंदिर के निर्माण का ज्ञान प्राप्त है। मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिरों की नगरी है। चंदेलों द्वारा वहां वैष्णव धर्म के भी कई मंदिरों का निर्माण किया गया है। परमार शासक भोजदेव के वेतन दान पत्र में गरुड़ध्वज फहराने का उल्लेख है। इससे यह अनुमान लगाना कठिन है कि वहां विष्णु मंदिर रहा होगा, जिस पर गरुड़ध्वज लगाया गया होगा। उड़ीसा भी इस समय वैष्णव मंदिरों का केंद्र था। भुवनेश्वर में बना इस काल का अनंत वासुदेव का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। यह वैष्णव धर्म का मंदिर है। प्रायः वैष्णव मूर्तियों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुजी विष्णु की मूर्तियां ही बनाई गई हैं। इनके साथ लक्ष्मी तथा विष्णु के वाहन गरुड़ को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अभिलेखों के ऊपरी सिरे पर प्रायः गज लक्ष्मी की आकृतियां उकेरी हुई है। अवतारों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। भारत के विभिन्न भागों में विष्णु के विविध अवतारों को पत्थरों में उकेरा गया है। उत्तर भारत में उनमें प्रधानतया मत्स्य, वाराह और नृसिंह की आकृतियां ही मिलती हैं, जबकि बंगाल में वामन और परशुराम का भी अंकन किया गया है। मध्य भारत में राम की आकृति और उनकी लीलाएं प्रदर्शित की गई हैं। इस समय का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर गुजरात में सहस्रलिंग झील के किनारे था। इसे चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज ने बनवाया था। वैष्णव व्रत और त्योहारों का भी लोक में प्रचलन हो चुका था। इसका ज्ञान विविध पुराणों के विवरणों से प्राप्त होता है। एक अभिलेख में आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का उल्लेख है। इस दिन से विष्णु का शयन हो जाता है, जो पुनः कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं, जिसको देवोत्थान एकादशी के नाम से एक दूसरे अभिलेख में इंकित किया गया है। इसी प्रकार गंगाधर अभिलेख में कृष्ण जन्माष्टमी का उल्लेख है, जो भादो के कृष्ण पक्ष के आठवें दिन मनाई जाती है। अलबरूनी ने रामनवमी के मनाए जाने की भी चर्चा की है। इनसे स्पष्ट है कि उस समय भी वैष्णव धर्म विकसित अवस्था में था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। दक्षिणी भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार व्यापक रूप से उसी समय से हुआ जब शुंगों के काल से वैदिक धर्म का पुनरुत्थान उत्तर भारत में हो रहा था। भागवत पुराण से एक भविष्यवाणी की गई है कि द्रविड़ देश में जहाँ ताम्रपर्णी, कावेरी आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वहाँ वैष्णव भक्तों की लंबी संख्या होगी। इसी पुराण में एक कथा है कि एक भक्त स्त्री घूमती हुई गोकुल आई और वहाँ नारद को अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि मेरा जन्म द्रविड़ क्षेत्र में हुआ था। मुझे धर्म में पुष्टता कर्नाटक और महाराष्ट्र में मिली, जहाँ से मैं गुजरात आ गई हूँ। यह स्त्री भक्त थी जो दक्षिण में उद्भूत तथा विकसित होकर वहाँ से उत्तर की ओर चलने पर उसकी शक्ति का इतना ह्रास हो गया कि वह असहाय हो गए। यह असहायता इस्लामी आक्रमणों के कारण थी जो हर्ष के बाद उत्तर में होने लगा था, और इससे हिंदुओं की मान्य अधिक धार्मिक परंपराओं पर आघात हो रहा था। दक्षिण में विष्णु तथा शिव की भक्ति भावना का उदय पल्लव शासक के काल में बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना की प्रतिक्रिया में हुआ। इस समय भक्त में विश्वास और आत्मसमर्पण की भावना पहले दार्शनिकों ने छेड़ा। उनके द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रेरणा मिली। दक्षिण में वैष्णव गुरुओं के दो वर्ग थे, आलवार और आचार्य। आचार्य अपने दार्शनिक सिद्धांतों का जहाँ प्रतिपादन करते थे, वही आलवार भक्ति गीतों के माध्यम से धर्म का प्रचार करते थे। ये वैष्णव संत तथा भक्त थे। एक, आलवार। आलवार तमिल शब्द है। तमिल भाषा में इसका अभिप्राय है भगवान की दया और प्रेम में सराबोर होना। चूंकि ये भगवत भक्ति में आकंठ डूब चुके थे, इसी से इन्हें आलवार कहा गया। जनता में ये विष्णु के सेवक के रूप में पूज्य थे तथा लोगों द्वारा सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। इनको आदिशेष, गरुण, विश्वकेशिन के रूप में मान्यता मिली थी। इनकी संख्या 12 थी। पोई गई भूतालवार पे तिरम जीशई, कुलशेखर, पोरियालवार, आनदाल, तोनेद, तदीपद्दी, तिरुप्पन, तिरुमंगई, नम्मालवार और मधु करकवी। पीछे इनके नाम भक्ति सूचक शब्दों में रखे गए। ये विभिन्न सामाजिक स्तर के लोग थे जो इसमें सम्मिलित हुए थे। जैसे कुलशेखर राजा था, तिरुमंगई डाकू था, तोंदरादीपोद्दी ब्राह्मण था और तिरुप्पन हरिजन था। फिर भी इनको एक ही पंक्ति में रखा जाता है। इनके प्रति जनता के मन में विशेष आदर का भाव था। ये भजनों की रचना करते हुए भगवान का गुणानुवाद करते थे। यही इनकी भक्ति का माध्यम था। इनकी गीतों का संग्रह नायलार प्रबंधन नामक ग्रंथ में किया गया है। इसमें कुल गीतों की संख्या 4000 है। आज भी दक्षिण भारत के द्रविड़ मंदिरों में पूजा के समय इन गीतों के गाने का चलन है। दो, आचार्य। ऊपर हमने दक्षिण के वैष्णव भक्तों को दो कोटियों में विभक्त किया है, आलवार और आचार्य। आचार्य शब्द से ही स्पष्ट है कि ये सिद्धांतों के प्रतिपादक तथा उपदेशक थे, तभी इस नाम से इनको संबोधित किया गया होगा। ये तर्कों के आधार पर अपने मतों का प्रतिपादन करते थे। आचार्य उपाधि का प्रयोग इनके लिए इस समय से होता था तथा इनके नाम के साथ वह शब्द जुड़ा रहता था, जैसे आचार्य नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य आदि। ऊपर जिन नामों की चर्चा की गई है वे क्रमशः अपने पहले वाले आचार्य के शिष्य थे। इन आचार्यों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना करके अपने मत को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। आचार्य नाथ मुनि पहले आचार्य थे जिन्होंने न्याय तत्व तथा योग रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की थी। इनमें यमुनाचार्य के आगम प्रमाण, सिद्धमय, गीता संग्रह तथा महापुरुष निर्णय नामक ग्रंथ मिले हैं। इनके शिष्य रामानुजाचार्य थे जिन्होंने गुरु के आदेशानुसार ब्रह्म सूत्र पर नया भाष्य किया, जिसमें शंकर के अद्वैत ब्रह्म के स्थान भगवान और भक्त को अलग अलग माना जिससे जीव भगवान की भक्ति कर सके। इसी दृष्टि को लेकर उपनिषदों पर भी उन्होंने भाष्य किया तथा द्वैत मत के स्थापनार्थ वेदांत सार, वेदांत संग्रह तथा वेदांत दीप नामक ग्रंथों का प्रणयन किया। इनका द्वैत मत विशिष्ट प्रकार होने से इसे विशिष्टाद्वैत नाम दिया गया। इन्होंने तीन सत्ता को संसार में माना है, जड़, जीव और परमात्मा। जीव को चेतन माना गया है, इसलिए इसमें जड़ तथा जीवात्मा मिलकर परमात्मा के समान हो जाता है। यही कारण है कि परमात्मा तत्व से जगत तथा जीवात्मा मिलकर परमात्मा के समान हो जाता है। यही कारण है कि परमात्मा तत्व से जगत की सृष्टि होती है और उसी में इसका विलय भी। इसलिए परमात्मा ही सर्वव्यापक है और घट घट वासी है। जब वह घट घट वासी होता है, इसमें तुमसे खड्ग खम्भ में, तो उसका स्वरूप सूक्ष्म होता है और जब सृष्टि की इच्छा करता है तो उसे अपने घट घट रूप को बढ़ाता जाता है। इसमें पुनः उसको भक्ति पूर्वक परमात्मा का स्तवन करना चाहिए। इसके बाद अनेक आचार्यों का ज्ञान मिलता है। इनमें माध्वाचार्य का स्थान विशिष्ट है, जिन्होंने द्वैतवाद को उद्भाषित किया है। इसमें केवल दो की ही सत्ता का स्थान स्वीकार किया गया, जीवात्मा और परमात्मा। इसी क्रम में कुछ आगे चलकर कृष्ण भक्त निम्बाचार्य ने अद्वैत का समर्थन किया तथा वल्लभाचार्य ने पुष्टि मत को स्थापित किया।